खबर जैसे भक्ति मार्ग में जो कौरवों का मुखिया था धृतराष्ट्र,
हाँ जी,
उसको दिखाया कि उसने दूसरों की धन संपत्ति को भी अपने कब्जे में अडप कर लिया,
हाँ जी।
इसी प्रकार पुरुषोत्तम संगम योग पर कैसे इसको डाली करें?
संगम युग में बेसिक नॉलेज में धृतराष्ट्र के साथ कोई धृतराष्ट्री थी, गांधारी थी, कोई गांधी था, गांधी होगा तो गांधारी भी साथ में होगी। गांधी को अंधा कहे या सोझरा कहे, क्यों? गांधी राम राज्य चाहता था,
राम राज्य को मिला नहीं, उसको ना हो से हो सका,
फिर न राम राज्य मिला और न राम राज्य लाया। राम राज्य राम ही लावेगा या कोई और लावेगा? राम बाप को कहा जाता है और बच्चा कृष्ण को कहा जाता है। जो अयोध्या रूपी मंदिर बनेगा जहां कोई युद्ध न होता हो, ऐसा अयोध्या में मंदिर राम का राम बनावेगा। मंदिर माने घर, राम का घर राम ही बनावेगा या कोई दूसरा बनावेगा? राम ही बनावेगा। तो इस बात को जो जानता वो है सूझर, और नहीं जानता तो अंधा। इशारा दे दिया मुरली में ही, गांधी मरा गुजरात में राजकोट में, कोई बड़े साहूकार कांग्रेस के यहां जाकर जन्म लिया। बेहद में अर्थ क्या हुआ? गुजरात माने जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई हो, जैसे शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र तो पढ़ते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं, लेकिन उन शास्त्रों की गुज राज को जानते हैं
नहीं?
नहीं जानते। जो जिसके मन में आया वैसे अर्थ करके सुना दिए, खुद भी अंधकार में और दूसरों को भी अंधकार में ला दिया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो भी वेदवाणी उच्चारी, उस वेदवाणी के रहस्य को कि कैसे नई दुनिया रची जाती है, रचयिता कौन है और उसकी रचना कौन है, नई दुनिया में नई दुनिया रची जाएगी तो कोई तो रचयिता होगा प्रैक्टिकल में, कि बिंदी रचयिता होती है
प्रैक्टिकल में होगा तभी,
प्रैक्टिकल में कोई रचयिता होगा, निमित्त मात्र कोई तो होता है ना। तो उस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिनकी बुद्धि में है वो है सोझरे। सोझरे की औलाद सोझरे, किसके बच्चे थे?
प्यासुरे।
अरे पांडव सोझरे थे ना, भगवान को पहचानते थे ना, वो किसके बच्चे थे? पांडव पुत्र, पंडा पुत्र थे। ऊंचे ऊंचे पंडा कौन है? बाप स्वयं ही ऊंचे ऊंचे पंडा है। पंड्याती जो रास्ता बताने वाला है, तीर्थ स्थान पर ले जाता है। तीर कहते हैं किनारे को, था माने स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान, ठिकाने लगाने वाला स्थान, ऐसे स्थान को जो दिखाता है उसे कहते हैं तीर्थ को रास्ता बताने वाला पंडा। ऊंचे ऊंचे पंडा है शिव बाबा। कौन सा ठिकाना देता है? सुखधाम और
शांति
धाम का असली ठिकाना, प्रैक्टिकल ठिकाना इस दुनिया में बनाए के देता है। वो तो गुरु लोग कहते रहे सदगुरु निंदक ठौर, उनके पास कौन सी ठौर है? सुखधाम की ठौर है, शांति धाम की ठौर है। वो ऐसा शांति धाम सुखधाम बना करके गए क्या? नहीं। और ही सुखधाम में गए, और यह शांति की दुनिया में जन्म लेते रहे। तो ये तो ऐसा पंडा है जो हमको कहाँ ले जाता है, सुख धाम और शांति धाम में ले जाता है। ऐसा ज्ञान सूर्य बाप, उसको जो पहचानने वाले होंगे वो सूर्यवंशी बच्चे होंगे या चंद्रमा की औलाद होंगे, जो चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेने वाला है, सूर्यवंशी बच्चे होंगे। धनवान बाप का कोई बच्चा होगा वो गरीब की एडॉप्शन लेगा क्या? सूर्य के बच्चे होंगे, सूर्य की औलाद बनकर रहे होंगे प्रैक्टिकल में, तो वो चंद्रमा की गोद में डालेंगे क्या? चंद्रमा की गोद के बच्चे बनेंगे क्या? नहीं। सोजरे के बच्चे अंधे की औलाद क्यों बनेंगे? अंधा किस आधार पर? मुरली तो सारी उनके मुख से चली, वेदवाणी तो चली, लेकिन वेदवाणी के गुह्य अर्थों को उन्होंने नहीं जाना। तीसरा नेत्र फिर भी खुला नहीं। बाप किस रूप में आया बच्चों के सामने? है? मां के रूप में सामने आया। मां भगवान बाप का रूप नहीं होती है। अगर मां भगवान बाप का रूप हुई होती तो भक्ति मार्ग में मां के रूप में भगवान के मंदिर बने होते, लेकिन काहे के मंदिर है? भगवती के मंदिर तो है, यादगार स्त्री चोले के रूप में भगवती की यादगार तो है, लेकिन भगवती को भगवान कहेंगे क्या? भगवती के ऊपर भी कौन होता है? भगवती विधवा थी क्या? नहीं। भगवती के ऊपर भी भगवान है और भगवान के ऊपर कोई और
नहीं,
और कोई होता नहीं। वो बापों का बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो टीचर्स का टीचर है, उसका कोई टीचर नहीं साकार में जो उसको पढ़ाई पढ़ा सके। वो गुरुओं का गुरु है, कोई देहधारी गुरु नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। उसको कहते हैं ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य प्रगटा दो अज्ञान अंधेर विनाश। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल प्रूफ यह है अज्ञान अंधेर विनाश होने का, कि दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं, उन धन संप्रदाय वालों को कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन कन्वर्ट करके फिर कोई और जगह न जाए ये बड़ी बात है। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना, उसमें पढ़ाई पढ़ने वालों ने और धर्मों को त्याग दिया, क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कोई ने कन्वर्ट कर पाया? कोई धर्म वालों ने कन्वर्ट कर पाया? नहीं कर पाया। इससे क्या साबित हुआ? कि वो पावरफुल संगठन रहा, लेकिन ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो कन्वर्ट कर दे उसे क्या कहा जाएगा? और वो कन्वर्ट होने के बाद खुद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो सरपरस्त हैं वो कहें कि ऐसे निकलते हैं, इनको कोई भी समझाए? कोई समझा नहीं सकता। तो भगवती स्वयं रचना है। मुरली में भी बोलते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो ब्रह्मा रचयिता हुआ या रचना हुआ?
रचना
हुआ। रचना से भी बड़ा कौन होता है? रचयिता बाप। तो वो रचयिता बाप और हम उसके बच्चे। हमारा बाप भी ज्ञान सूर्य सोझरा देने वाला, और उसको सोझरा देने वाला कोई होता नहीं। तो समझ में आ जाता है कि आंखों का अंधा कौन, और फिर उसको सहयोग देने वाली आंखों की अंधी तो नहीं थी, लेकिन जानबूझ करके
पट्टी बांधी,
पट्टा बांध ली, अंधी थी तो नहीं ना, अंदर से सारी बात समझती तो थी लेकिन वो पट्टा बांध लिया कि जैसा बाप वैसी हम रचना बनेंगे। और
बाबा वाणी में आया है ब्राह्मण वो जो रचता और रचना को जानता हो, तो ब्रह्मा बाबा ने तो रचता को नहीं जाना,
नहीं जाना, इसीलिए तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल इस समय पढ़ाई पढ़ रही है या पढ़ा रही है?
पढ़ रही है,
अभी भी कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, वो अभी भी बच्चा बुद्धि, क्योंकि अभी भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान साकार में कौन होता है। वो साकार में गीता का भगवान किसको समझते हैं? शिवो हम, तो दुनिया का बड़े से बड़ा शिवो हम कौन हुआ? जो भक्ति मार्ग में और अपन को शिवो हम कहने वाले हैं वो उतने बड़े शिवो हम नहीं है, लेकिन उनका भी बड़े से बड़ा शिवो हम जो शिवो हम की फाउंडेशन डालता है वो स्वयं ब्रह्म अभी भी है। चोला छूट गया है तो कोई दूसरे निमित्त चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, पुरुषतन छूट गया ब्रह्मा का वो नहीं पूजा जाता, कब पूजा जाता है? जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब पूजा जाता है। तो जिस भी स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाता है, ब्रह्मा को हो जगदम्बा को बात तो एक ही, उस चोले के द्वारा वो गीता का भगवान किसको समझता है? तो साबित हो गया कि ज्ञान की आंख नहीं है, भगवान आवेगा तो कुछ करके जावेगा, ये ऐसे ही वापस चला जाएगा, कुछ करके गया है प्रैक्टिकल में तब संसार भगवान को मानता है, और ऐसा कुछ काम करके गया है जो दुनिया के कोई भी धर्म पिताओं ने नहीं किया, नई दुनिया कोई नहीं बनाई, दुनिया की मरम्मत तो की है टाइम टू टाइम, लेकिन मरम्मत कितने दिन चलेगी? थोड़े टाइम जो भी धर्म आया सात्विक रहता है, जल्द ही तमो प्रधान बन जाता है। 2500 वर्ष के लिए षष्ठ चक्र में आधा समय के लिए नई दुनिया कोई ने नहीं बनाई, बाप आकर के नई दुनिया बनाते।
बाबा ये रुद्र माला जब विजय माला में ऐड होती है, उसके बाद शरीर रेजुविनेट होते हैं या पहले रेजुविनेट होकर ऐड होती है?
रेजुविनेट माना
कंचन काया,
कंचन काया माला प्रत्यक्ष होने के बाद बनेगी या पहले बन जाएगी?
पहले
और रुद्रमाला का मण के प्रत्यक्ष होने से पहले ही कंचन काया बन जाएगी?
नहीं, बाद में बनेगी।
और पहले सिर्फ रुद्रमाला ही बनेगी या विजयमाला प्रत्यक्ष होगी?
विजयमाला,
तब शरीरों का पांच तत्वों का कन्वर्शन होगा, पहले आत्मा का कन्वर्शन होगा, आत्मा रिजुविनेट होगी या पहले शरीर रिजुविनेट होंगे? आत्मा, और आत्मा तब तक रिजुविनेट नहीं हो सकती जब तक प्रवृत्ति मार्ग की पक्की न बने। रुद्रमाला के मण के अपने में पक्के हैं या कच्चे हैं? तब तक कच्चे हैं जब तक उनको उनके समान पुरुषार्थी न मिले, और जब समान पुरुषार्थी मिल जाएगा तो रुद्रमाला के मण के विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जमदे जामदे नहीं होता है, आत्मा को अपवित्र से पवित्र बनने में, पतित आत्मा से पावन बनने में कितना टाइम लगा? अभी कितने साल हो गए? 70 साल अभी तो रुद्रमाला भी पूरी प्रत्यक्ष नहीं हुई है, अभी तो 8 का ही नंबर लग रहा है, शुरू हो रहा है। 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तब कहा जाएगा टू लेट का बोर्ड लग गया। अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इसका मतलब अभी आत्माएं भी संपन्न नहीं बनी है। तो 70 साल पूरे हो गए, अभी आत्माएं भी संपन्न नहीं बनी। तो 5 प्रकृति के तत्व जो जड़ तत्व होते हैं, जिनमें समझ ही नहीं है, 5 तत्व कहे जाते हैं ना, क्या नाम है उनका, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो भी चैतन्य रूप में होंगे, उनके भी जो मूल है वो साकार में होंगे या सिर्फ जड़ होंगे। अरे पृथ्वी, कोई पृथ्वी के रूप में पार्ट बजाने वाली पृथ्वी माता साकार में होगी या सिर्फ ऐसे ही साकार में होगी? तो वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली होगी या चैतन्य बुद्धि होगी, बाप को पहचानने वाली?
साकार में होगी तो चैतन्य होगी,
चैतन्य बुद्धि होगी, बाप को पहचानने वाली।
अगर साकार में होगी तो
पहले प्रकृति के 5 तत्व तो बाप को पहचानेंगे, जो रावण के सिर दिखाई जाते हैं। रावण के 5 सिर माया के रूप दिखाई जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर 5 सिर प्रकृति के 5 तत्व दिखाए जाते हैं, 10 सिर दिखाए जाते हैं ना, तो वो 10 सिर बाप को पहले पहचानते हैं या जड़त्वमय बुद्धि वाले हैं? रावण के सिरों को क्या कहेंगे, बाप को पहचानने वाली बुद्धि है या बाप को तिरस्कार करने वाली और न पहचानने वाली बुद्धि है? बाप को न पहचानने वाली अथवा तिरस्कार करने वाली बुद्धि। इसलिए बोला मुरली में, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा तत्व है जिस पृथ्वी तत्व पर सारी दुनिया का आधार है। जो भी चैतन्य है जीव जंतु, वो कहां रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और कोई दूसरे ग्रह उपग्रह में तो
नहीं रहते,
जीव जंतु रहते ही नहीं। चैतन्यता जो है वो सिर्फ पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसी जगह है जहां सूर्य की किरणें ज्ञान की किरणें तिरछी पड़ती है, क्योंकि बहुत दूर है। तो वहां भी कोई जीव जंतु
नहीं।
जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहीं जीव जंतु ज्यादा हैं। विषुवत रेखा के आसपास, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास तक जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, माने ज्ञान सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश जहां जहां मिलता है वहीं चैतन्यता है। तो 5 तत्व पहले संपन्न बनेंगे या आत्माएं पहले संपन्न बनेंगी? मन बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी आत्माओं को संपन्न बनने के लिए इतना टाइम है, 100 वर्ष का संगम युग। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होगा। जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा पतितों का है, वहां पावन का संगठन कैसे प्रत्यक्ष होगा? इसलिए जब तक दुनिया में पापात्माओं की संख्या ज्यादा है तो वाइब्रेशन पाप के ज्यादा बनेंगे या पुण्य के ज्यादा वाइब्रेशन बनेंगे? कब तक बनते रहेंगे?
जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा।
नहीं, पुण्य के वाइब्रेशन बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इनकी संख्या ही मुट्ठी भर है। सतयुग की नई दुनिया की शुरुआत करने वाले टोटल आत्माएं कितनी है?
9 लाख
साढ़े चार लाख
9 लाख तो 2036 में भी नहीं होंगे। 2036 में भी 9 लाख आबादी नहीं होगी। राधा कृष्ण का जन्म होने के बाद राधा कृष्ण जैसे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 4.5 लाख हो जाए और जन्म देने वालों की संख्या 4.5 लाख हो जाए तो सतयुग के पहले जन्म के बाद जब राधा कृष्ण जैसे दूसरे नंबर के बच्चे पैदा हो माने दूसरा नारायण तब कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पाप आत्माओं की दुनिया पूरी खलास नहीं होती है तब तक नई दुनिया का वाइब्रेशन अच्छा नहीं बन सकता और वाइब्रेशन जब तक अच्छा नहीं बनेगा श्रेष्ठ आत्माओं का तब तक वाइब्रेशन के आधार पर 5 तत्व भी पावन नहीं बन सकते। और
प्रवास में तो हमें ये ज्ञान मिला है कि राधे कृष्ण एक ही गर्भ में आते हैं दोनों इकट्ठे। तो बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण दोनों अलग अलग घर के हैं।
बाबा ने तो दोनों बातें बोली। कृष्ण सूर्यवंश का राधा चंद्रवंश की तो अलग अलग वंश के हुए कि एक वंश के हुए अलग अलग वंश के हुए लेकिन एक्यूरेट सतयुग जब शुरू होगा तो 2 वंश होंगे कि एक ही वंश होगा। अरे चित्रों में लिखा हुआ है नई दुनिया जब सतयुग होगी तो वहां एक वंश एक राजा एक राज्य एक धर्म एक मत एक भाषा होगी। द्वैत कहां से आ जाएगा? द्वैत इस दुनिया में है या नई दुनिया में द्वैत होगा?
इस दुनिया में
वहां दूसरे को याद ही नहीं करेंगे। राधा कृष्ण को याद करेगी कृष्ण राधा को याद करेगी तो ढेर सारे संबंध ही नहीं बनेंगे। संबंध ही बहुत थोड़े होते हैं माँ बाप और
बच्चे
दूसरा कोई संबंध नहीं है। फाउंडेशन कहां पड़ता है? सभी संगम युग में बाप आकर के फाउंडेशन डालते हैं। तुम्हारा दुनिया में अब कोई संबंध नहीं कोई के साथ सब संबंध किसके साथ है? एक बाप दूसरा तो सतयुगी राधा कृष्ण वो साथ साथ जन्म लेंगे तब ही विधुर नहीं बनेंगे विधवा नहीं बनेंगे। साथ साथ जन्म लेंगे साथ साथ शरीर छोड़ेंगे और एक जन्म के लिए बाप आकर के शादी नहीं कराते।
21 जन्मों
का साथ देता हूं तो कितना सुख होगा।
बाबा जो आत्मा मन चिंतन नहीं करती है जो आत्मा मन चिंतन नहीं करती है उनका भाग्य कैसे बनेगा?
जो सर्विस करेगा उसका मन चिंतन मंथन चलेगा। अभी बोला कि नहीं बोली में क्या बोला? जो सेवा करेगा सर्विस फील्ड में रहेगा उसका मन चिंतन मंथन भी चलेगा और सर सेवा ही नहीं करेगा तो ऊंच पद बनेगा।
जो
हम ऊंच पद नहीं बनेगा तो मंथन भी नहीं चलेगा। जो बुद्धि में आ जाए कि हमारा ये पद बनने वाला
और जो शरीर से नहीं जा पाएगा और मन से शरीर से नहीं जा पाएगा
कहाँ नहीं जा पाएगा?
सेवा करने के लिए।
सेवा सबसे जास्ती मनसा से होती है या वाचा से होती है या कर्म इंद्रियों से होती है? सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? तो फिर
और बाबा जो दोड़ा दंडी हम घर से छोड़कर एक बाप को ही याद करना है
घर को छोड़कर के बाप को याद करने
का मतलब
ये तो नहीं बोला
मन बुद्धि से दोड़ा दंडी अपना समेटना है नहीं करना है एक बाप को याद करना है।
धंधा दौड़ी करना ही नहीं है और बच्चे पैदा किए हैं उनको मार डालना वो
कहने का मतलब है दौड़ा धंधा करते हुए भी बाप को याद करना है।
ठीक है
तो जब बाप को याद करते करते बीच में किसी और की याद आ जाती है तो कैसे कंट्रोल करना है?
कैसे कंट्रोल करना? वो चीज प्रैक्टिस की जाएगी तभी तो प्रैक्टिस पड़ेगी। ہماری تو پریکٹس ہی ہے اور سب کو بھولنا اور ایک باپ کو یاد کرنا. 63 جنم ہم نے کیا کیا ہے اور آتماؤں کے ساتھ سمبندھ جوڑا ہے اور باپ کے ساتھ آٹومیٹک ٹوٹتا گیا. ابھی کیا کرنا پڑے؟ ایک سنگ جوڑ اور سنگ توڑ اور سنگ توڑ. یہی تو پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ. ابھیاس سے ہی باپ کی یاد پکی ہوگی. ابھیاس ہمارا 63 جنموں میں ٹوٹ گیا. بے بیچاری یاد بن گئی ہماری. اب ہم کو ایسا گیان ملا ہے کہ باپ کہتے ہیں باپ باپ نہیں رہے گا. ایسا بھی سمے آنے والا ہے. ماں ماں نہیں رہے گی, بھائی بھائی نہیں رہے گا, کوئی سمبندھ ساتھ دینے والا نہیں رہے گا. ابھی بھی سمجھتے ہیں لیکن ابھی کم سمجھتے ہیں. کم اس لیے سمجھتے ہیں کہ پھر بھی بدھی وہیں چپک جاتی ہے جا کے. لیکن ایسا ٹائم آنے والا ہے, یہ انوبھوتی سب کو ہونی ہے کہ ایک باپ
دوسرا نہ
دوسرا. سب دھوکے باز ہیں, سب دھوکا دینے والے ہیں. ایک باپ ہی سچا ثابت ہوگا. اور
بابا تین ندیوں کا نام دیا گیا جہاں کٹھی ملتی ہیں, گنگا جمنا سرسوتی. جیسے سرسوتی اوندارا مما کو بولا گیا تو گنگا جینتی مما کو بولا گیا تو جمنا کون؟
تینوں میں بڑی کون ہے؟ گنگا بڑی ہے بھکتی مارگ میں, یا یمنا بڑی ہے, یا سرسوتی بڑی مانی گئی؟ بڑی کا مطلب پہلے پیدا ہو, جس کا پد پہلے پرتکش ہو جاتا ہے. یگی کے یاد میں بابا نے اشارہ دیا. ایک بھنگن آتی تھی, آتے ہی بابا کے گلے میں لپٹ جاتی تھی سب کے سامنے. تو پہلے پہلے کون سرنڈر ہوئی؟ اس نے لوکلاج دیکھی نہیں دیکھی؟ وہ پہلے سرنڈر ہوئی. لیکن اس کے جو سمبندھی تھے, رشتے دار تھے, گھر والے تھے, انہوں نے جب اپوزیشن کیا تو زبردستی اٹھا کے لے گئے. مانا وہ استھائی نستھائی نہیں رہ سکی. مانا جگدمبا سے بھی پہلے کون سرنڈر ہوتی ہے؟ یمنا سرنڈر ہوتی ہے. وہ باپ کی بچی پہلی بنتی ہے لیکن لمبے سمے تک سہیوگ نہیں دے پاتی. سرنڈر ہونے سے نمبر بنتے ہیں یا نبھانے سے نمبر بنتے ہیں؟ نبھانے سے نمبر بنتے ہیں. تو نبھانے میں جگدمبا آگے نکل جاتی ہے. اور
بابا گیتا جو ہے اس کے ادھیائے بھی 18 ہے.
ہاں جی.
یدھ بھی 18 میں نہیں چلا.
ہاں جی.
اور پانڈو کی سنکھیا بھی 18 تھی.
ہاں جی.
اور سیرا بھی 18 ہی
اکشر تھی.
اس کا 18 کا کیا مہتو ہے؟
18 کا مہتو یہ ہے کہ جو 9 دھرم ہیں باپ سے پراپتی کرنے والے, وہ 9 دھرموں کا ڈبل ہوا 18. کیا اوپر سے جو آنے والی آتمائیں ہیں اور جن میں وہ پرویش کرنے والی ہے, دونوں مل کر کے ماں باپ ہو گئے. جیسے ابراہیم اوپر سے آتا ہے اور وہ کسی میں پرویش کرتا ہے, تو ماں کون ہوئی اور باپ کون ہوا؟
نیچے والا باپ ماں,
نیچے والی ماں اور اوپر والا باپ. تو ماں باپ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے یا بچوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ تو ساری سرشتی کی پاور فل آتمائیں ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 9 دنیا 18. اور
بابا جو نشٹ ہوتے واسط دیو میں جاتے بنا کچھ نشانی ہو 108 میں جاتے ہیں,
جب سے گیان میں آئیں گے خاص کر ایڈوانس میں, تب سے لے کر کے انت تک یہ وشیشتا ان کی ضرور دیکھنے میں آئے گی. کیا نشٹو موہا لگا؟ آخری جنم میں جا کے گرتے ہیں اور مایا کسی کو چھوڑتی نہیں.
हाँ जी इसका तो मतलब है ना कुछ निशानी हो वो आठ में जाते 108 में जाते
तो अभी तो बता दी निशानी आपने खुद ही बता दी हमारा मूल मुख्य है प्रश्न क्या है फाइनल पेपर का जब पहले से फाइनल पेपर निश्चित है तो सबसे जास्ती पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए जब से ज्ञान में आए तब से लेकर के अंत तक ये विशेषता देखने में आए क्या नष्ट हुआ
समझ की लगता है वैसे ही मतलब कुछ कुछ निशाने होते कुछ पाने
ये निशानी नहीं है
हाँ जी
हाँ
बाबा शास्त्रों में लिखा है दमू पीते बाद खंडे आर्य वर्दे
आर्य मन
आर्य वर्दे दमू पीते
आर्य माने क्या आर्य माना सुधरे ले सुधरों का क्षेत्र है जम्बू द्वीप है जमने वाला है हिलने वाला
नहीं
है हिलने वाला नहीं है भारत खंड किसका खंड है इब्राहिम का खंड नहीं है क्राइस्ट का खंड नहीं है जो सिर्फ रथ किसमें रहता है रथ माने लगा हुआ किस बात में लगा हुआ रहता है भा भा माना रोशनी जो सिर्फ ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है ऐसा खंड है हाँ जी
बाबा ब्रह्मा बाबा को तपस्या करते भी बताया ब्रह्मा बाबा को तपस्या करते भी बताया सीढ़ी के चक्कर में
जो सीढ़ी के चित्र में
और हाँ जी यहाँ खड़े भी बताया लास्ट में
हाँ हाँ
और साथ में कांडों की सैया में भी लेटे हुए
हैं हाँ जी कांडों की सैया पर एक आदमी दो जगह कैसे दिखाया जाएगा जो कांटों की सैया पर लेटा हुआ है वो कांटों की सैया पर लेटा हुआ चैन की बंसी बजा करके जाता है पुरुषार्थी जीवन में या बेचैनी का जीवन बताता है चैन की बंसी कृष्ण की सोल बजा करके गई या राम भाई आल राम वाली आत्मा चैन की बंसी बजा के जाती है
कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा
कृष्ण वाली आत्मा जब तक रही तब तक महावारी महाभारत युद्ध ही
नहीं हुआ
अशांति कोई वातावरण बात ही नहीं राम वाली आत्मा का पार्ट कहाँ है
अभी चल रहा
है
जब दुनिया में घोर अशांति का वातावरण होगा तब वो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी
बाबा जो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद एडवांस में आ जाती है फिर उसका दोबारा साकार में जन्म हो सकता है कि नहीं हो सकता
अगर कोई भक्ति मार्ग का संस्कार 100% पक्का हो गया एडवांस में चलते चलते तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा लेकिन ये निश्चित है कि जो भी एडवांस में आते हैं उनको लक्ष्य क्या मिलता है
नरसे नारायण
हमें नरसे नारायण जीवन रहते रहते बनना है
श्री छोड़ने
क्या
श्री नहीं छोड़
जीवन ही खत्म हो जाए फिर नारायण बनने का कोई मतलब नहीं तो वो अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो जन्म लेकर के दोबारा पुरुषार्थ करेंगे और फिर दूसरे जन्म में नरसे नारायण बनने का पुरुषार्थ उनका पूरा होगा क्योंकि लक्ष्य लिया हुआ है अंत समय में वो लक्ष्य याद आवेगा जो बेसिक में चलने वाले हैं उनकी बुद्धि में ये लक्ष्य नहीं है कि हमको इसी जीवन में नरसिंह नारायण बनना है
पहले सोते बैठे हैं तो मरने के बाद
ब्रह्मा बाबा लक्ष्य सैंबल बनाया हुआ है तो जैसा सैंबल बनाया हुआ है वहां तक ही तो पहुंचेंगे उसे आगे पहुंच जाने में और
बाबा मतलब उधमपुर का देहात में क्या मतलब है
जो ज्यादा उधम मचाते हैं वो स्थायी हो जाते हैं या बिखर जाते हैं
बिखर जाते
हैं ज्ञान मार्ग में भी जो ज्यादा धमचक्कर मचाने वाली आत्माएं होती है वो डटी रहेंगी या बिखर जाएंगी उधमपुर का अभी बेसिक नॉलेज में क्या हाल है
बिखरा हुआ
है,
टूटा हुआ
है,
जो बीके में करते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियाँ वो बोलते हैं श्री ईश्वर के और वार्ड पार्टी में चले जाएंगे, वो कैसे जाएंगे?
कहाँ चले जाएंगे?
एडवांस पार्टी
में चले जाएंगे,
एडवांस पार्टी में चले
गया। अभी बात आई थी अंधे की औलाद, अंधे तो जो अंधे होते हैं उनको पता है कि एडवांस पार्टी क्या है?
वो ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं जो
नहीं, अंधों को इस बात का पता है कि एडवांस पार्टी क्या है?
नहीं,
जब पता ही नहीं है तो कहाँ चले जाएंगे? जैसे कोई अंधेरे में,
बोलते हैं ऊपर एडवांस,
अंधेरे कमरा हो और अंधेरे कमरे में लठ चलाए दे कि हमने सांप मार लिया तो अंधा हुआ ना। ऐसे ही है, मुरली में तो बोला है सूक्ष्म बदन कुछ है ही नहीं। सूक्ष्म बदन क्या होता है? कुछ भी नहीं। फिर ये भी बोला है सूक्ष्म बदन वहां देवताएं दिखाते हैं, सूक्ष्म बदन वासी उनको हड्डी मांस होता नहीं, तो दो बातें कैसे साबित होंगी? एक ही बात सच्ची होगी या दो बातें सच्ची होंगी? एक ही बात सच्ची होगी, सूक्ष्म बदन तो है लेकिन ये बुद्धि की स्टेज है। जैसे रात में सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न हम स्थूल शरीर से देखते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, या सूक्ष्म शरीर से घूमते हैं? तो सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर माना मन बुद्धि। तो ऐसे ही जब स्थूल शरीर छूट जाता है तो क्या रह जाता है? सूक्ष्म शरीर रह जाता है, वो मन बुद्धि रूपी आत्मा चारों तरफ चक्कर काटती है।
बाबा मन बुद्धि के साथ संस्कार नहीं होते?
वही सर, वही वही वही
संस्कार भी तो साथ में है,
मन बुद्धि के साथ संस्कार में है।
अंदर तीन शक्तियां हैं।
हाँ जी, हाँ जी, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया,
मन बुद्धि और संस्कार।
हाँ जी, हाँ जी, मान लिया।
तो वो संस्कार भी साथ साथ चलेंगे,
मन बुद्धि, मन और बुद्धि। ये कोई जरूरी नहीं कि मन हमेशा रहे ही रहे। क्या शिव ज्योति बिंदु उसको मन रहता है?
नहीं,
उसको मन नहीं रहता तो भी आत्मा तो है ना। ऐसे ही जिसको मन नहीं रहता अमन हो जाता है वो ही देवता कहा जाता है या तो भगवान कहा जाता है। तो कोई को मन होता है, कोई को मन नहीं होता। जब मन नहीं होगा तो जो स्थूल शरीर के संस्कार है वो भी नहीं होते,
संकल्प ही नहीं होगा,
संकल्प ही नहीं होता। हाँ जी
बाबा, जैसे अष्टे धर्मों का दूसरे धर्मों में गायन है, एक सुधागा तक
दूसरे धर्मों में अष्ट देवों का गायन नहीं है। दूसरे धर्म वाले देव बनते ही नहीं, वो सिर्फ फरिश्ता बनकर के रह जाते हैं।
ये जो गायन है कि सुधागा तक आठ फरिश्तों ने उठाया,
हाँ,
तो ये अष्ट देवों के लिए है?
नहीं नहीं, वो फरिश्ते जो बन जाते हैं जिन्हें अभी बेसिक वाले एडवांस पार्टी कहते हैं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा, जैसे कुमार का दादी की आत्मा, जैसे जगदीश भाई की आत्मा, उनका स्थूल शरीर नहीं रहा फिर भी वो कोई में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे या नहीं बजावेंगे, तो उनको वो फरिश्ता कहते हैं। वो वास्तव में 84 जन्म लेने वाले देवता
नहीं
बनते।
उनको तो वो आठ पुरुषों की ही पहचान नहीं हुई
है,
तो आठ पुरुषों की
उन्हें भगवान की पहचान हुई। आठ में से जो देवदेव महादेव बड़े से बड़ा देवता है उसकी पहचान हुई। जब बाप की पहचान नहीं हुई तो आठ की पहचान कहां से हो जाएगी? हाँ, अपने भाई बंधुओं की पहचान हो जाती है जो आठ फरिश्ता माने जाते हैं। और
अब 2036 में कृष्ण वाली जो आत्मा है, सदैव कृष्ण वाली जो आत्मा है वो जन्म ली, तो उसके बाद बिल्कुल 18 वर्ष होने के बाद तो बिल्कुल डिनेस्टी उसको प्राप्त होगी ना,
डिनेस्टी
उसके हाथ में आएगी। साल वाले
जन्म लेते ही डिनेस्टी हाथ में आ जाती है?
18 साल बाद।
18 वर्ष कैसे?
मतलब 36 के बाद 18 साल होगा तब तो बालिक बनेगा।
उनके लिए 18 साल नहीं बोला है
जी,
दो बातें बोली है। 60 साल होने के बाद राजगद्दी मिलती है, फिर बोला 18-20 साल का हुआ होगा
तो राजगद्दी,
तब गद्दी मिलती है। तो कॉन्सिक्वेंस के लिए क्या बात लागू होती है? जो 18-20 साल की बात बोली है वो संगम जी कृष्ण के लिए बोली है, और जो 60 साल की बात बोली है वो सत्युग के पैदा होने वाले बच्चों के लिए बोली
है। बाबा एक माता जी को लेटर में आया बाबा से कि मुरली किसको पसंद होती है और अभ्यक्तवाणी किसको, तो उसमें आंसर आया कि जो दैवी गुण वाले होते हैं उनको अभ्यक्तवाणी पसंद होगा,
जो दैवी गुण वाले नहीं होते हैं, जिनके अंदर दैवी गुणों की धारणा नहीं है उतनी, उनको अव्यक्तवाणी अच्छी लगेगी।
मुरली
और मुरली उनको अच्छी लगेगी जो ज्ञानी तू आत्मा है, लेकिन धारणा नहीं।
बाबा जिसमें हम जाते थे तो फूलों का हार लेके जाते थे,
कहाँ
मतलब क्लास करने जाते थे फूल
हाँ।
के हार लेके जाते थे,
ठीक है,
मतलब सुंदर सुंदर हार लेके आओ, फूल लेके आओ
हाँ।
अब एडवांस में किसको बोलते हैं फूल?
फूल कहते हैं सुखदाई को, दिव्य गुणों की सुगंध देने वाले को। यहाँ जो भी बातें बोली जाती हैं ज्ञान मार्ग में वो बेहद में बोली जाती है कि हद में बोली जाती है? एक होते हैं हद के फूल और एक होते हैं बेहद के फूल। तो फूल जो होते हैं वो सुखदायी होते हैं, दिव्य गुणों की खुशबू देने वाले होते हैं। यहाँ कौन से फूल अर्पण करने की बात है, है? चैतन्य फूलों की बात है या जड़ फूलों की बात है? चैतन्य फूलों की बात है। वहां दिखाते हैं भक्ति मार्ग में शिव जी को सब तरह के फूल अर्पण कर किए जाते हैं, अच्छे से अच्छे फूल, गुलाब के फूल भी अर्पण करते हैं। जब श्रावण मास आता है तो शिवलिंग को नहीं गुलाब के फूलों से सजाया जाता है। श्रावण मास माना ज्ञान बरसात का विशेष महीना। और फिर रोजमर्रे के जीवन में जो पूजा होती है उसमें अक का फूल भी चढ़ाते हैं और धतूरे का फूल भी चढ़ाते हैं। धतूरे के फूल में छेद लंबा होता है, तो अपवित्र हुआ है या पवित्र हुआ है? दुर्गंध निकलती है। वो अपवित्र फूल भी उन पर अर्पण किए जाते हैं, उनको भी वो पवित्र बना लेता है।
बाबा जो तीन पत्र वाली बिल पत्री चढ़ाते हैं उसका क्या मतलब है?
नई सृष्टि जब वो शुरू होगी तो पहले दो पत्ते कौन होंगे, चैतन्य होंगे या जड़ होंगे?
चैतन्य
पत्ते होंगे। ऐसे ही संगम की दुनिया जब शुरू होती है तो भगवान अकेला आता है या तीन पत्तों के साथ आता है?
तीन पत्तों के साथ आता है।
पहले पहले अर्पण में जीवन कौन बिताते हैं? ब्रह्मा दादा लेखराज अर्पण में जीवन बिताता है पूरा, या कोई और आत्माएं हैं जो अर्पण में जीवन बिताती है? ब्रह्मा को कैसे बताएगा, उन्होंने पहचाना किसके लिए अर्पण हुए। ब्रह्मा बाबा किसके प्रति अर्पण हुए? अरे पहले पहचानेगा तब अर्पण होगा, या बिना पहचाने हवा में अर्पण हो जाएगा? पहले तो पहचानना जरूरी है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सरपरस्त कोई पहचाना, अपना बाप कौन है, पहचाना किसी को?
अर्पण के दिया नहीं, धन उसने अर्पण किया तो पहचान के किया।
किसको किसको पहचाना? किसको पहचाना? प्रैक्टिकल को पहचाना या बिंदु को पहचाना?
बिंदु को पहचाना
तो प्रैक्टिकल है। जो बिंदु के 32 गुण लिख दिए हैं चित्र में, 32 गुण वाला चित्र है ना शिव का, तो वो 32 गुण जो है वो साकार में होते हैं गुण और अवगुण, या निराकार ज्योति बिंदु में होते हैं?
साकार में।
तो वो तो चित्र ही गलत है। पहले उस चित्र को सुधारा जाए कि वो चित्र कौन सा है असली, जो 32 गुणों वाला है। हाँ, कोई जरूर ऐसा साकार है जो बाप समान स्टेज को धारण करता है।
तो बाप ही
है, बाप है तो, लेकिन हिंदू बाप है या प्रैक्टिकल कार्य करने वाला बाप है?
प्रैक्टिकल कार्य करने वाला।
बाबा अभी जो दर्जे श्री हो रहा है इसको साकार में रहते हुए पता था कि बाबा साकार में है?
अभी तो बताया, जितनी भी दीदी दादियां हैं उन दीदी दादियों में के बीच में ब्रह्मा बाबा के रहते रहते सबसे जास्ती खातिरी किसकी होती थी? कुमारिका की खातिरी होती थी ना, माने बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी या नहीं चढ़ी हुई थी? चढ़ी हुई थी भाइयों में विश्व किशोर और कन्या माताओं के बीच
कुमारिका
दादी। तो बाबा ने कुछ गुण देखा होगा कि ऐसे ही
गुण देखा,
कोई गुण देखा ना? कुमारिका दादी की ये विशेष सिफ्त थी कि एक बार उनको मुरली पढ़ने को या सुनने को मिल जाए और सारी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी।
बाबा कुमारिका दादी शरीर छोड़ने के बाद भी तो डिसर्विस कर ली।
कैसे?
जैसे उसने बोला कि कोई भी काम शुरू करने से पहले दादी को और बाप दादा को याद करके फिर शुरू करो।
देखो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो निराकार को समझती हैं या निराकार साकार दोनों को समझती हैं?
निराकार साकार दोनों को।
तो इस्लाम धर्म में जो भी होंगे वो प्रैक्टिकल इब्राहिम और उनके आधार मूर्त को या उसके बीज मूर्त को समझेंगे या नहीं समझेंगे? समझेंगे, तो वो साकार होंगे या सिर्फ निराकार होंगे? जो भी धर्म पिताएं आए वो अपने को दुनिया में साकार रूप में सबसे बड़ा समझ के बैठे या अपने से ऊपर भी किसी को साकार रूप में माना? क्राइस्ट ने अपने को ही सब कुछ माना, अपने से बड़ा इस दुनिया में किसी को? महात्मा बुद्ध ने अपने को ही साकार रूप में सब कुछ माना, अपने से बड़ा दुनिया में किसी को नहीं माना। तो इससे साबित हुआ कि कुमारिका दादी भी जो है जब मेगा प्रोग्राम हुए तो पोल पट्टी खुल गई कि मेगा प्रोग्राम में जो बड़े बड़े पोस्टर छपाए जाते थे उसमें तीन मूर्तियों को किसको किसको मुख्य रखा?
तीन दादी,
तीन दादी तो दादी आ गई ना, उसमें सबसे ऊपर कौन?
राजमणि
कुमारिका दादी को रखा जाता था। तो दुनिया में सबसे बड़ा साकार रूप कौन हुआ इस्लामियों के लिए? जी जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, भगवान भी उतर आए तो भी उसकी बात नहीं मानेगा। इसी यही कारण है कि एडवांस ज्ञान सुन तो सब लेते हैं, सुनने वाले उसको मान भी लेते हैं कि सच्चा है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, जब तक दादी नहीं मानेगी तब तक हम नहीं मानने वाले। इसका मतलब वो जन्म जन्मांतर किसकी प्रजा बनने वाले? दादी की प्रजा बनने वाले।
बाबा के ज्ञान में चलने के बाद, एडवांस में चलने के बाद सिर्फ एक बाप को ही याद करे, कोई दीदी कोई मम्मा को भी नहीं करे, तो उसका क्या पार्ट होगा?
अच्छा ही पार्ट होगा। अब भिन्नचारी होगा तो पार्ट कैसा होगा? भिन्नचारी पार्ट होगा। और
बाबा शरीर छोड़ने के बाद उनके संस्कार इतनी जल्दी चेंज कैसे हो जाते हैं?
शरीर छोड़ने के बाद संस्कार चेंज हो जाते हैं?
जैसे कुमारिका जी पहले अपोजिशन करते थे तो अब बाबा ने कहा कि वो सर्विस करेंगे।
हाँ, उसका कारण ये है कि जब साकार शरीर के बंधन में थी तो उनमें भक्ति मार्ग के संस्कार ज्यादा थे या ज्ञान मार्ग के संस्कार ज्यादा थे?
भक्ति मार्ग।
जो भक्ति मार्ग के संस्कार वाले होते हैं वो लोकलाज से डरते हैं या नहीं डरते हैं?
डरते हैं।
वो लोकलाज से डरते हैं। तो जब तक साकार शरीर रहा वो बड़े बड़े गुरु लोग सन्यासी लोग अपने चेले चपाटों से डरते हैं, पता नहीं ये क्या कर देंगे अगर हमने सच्ची बात बोली। तो दबी हुई थी आत्मा, और साकार शरीर छोड़ने के बाद वो लोकलाज का बंधन खरास हो गया। अब असली बात को जान ली तो भी ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ नहीं रखा, अपने ग्रुप में रखा क्या? नहीं रखा। क्या कहा? 13 दिन के बाद ये जाएगी सर्विस फील्ड में। उनका सर्विस फील्ड अलग और ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल का सर्विस फील्ड अलग। उनका सर्विस फील्ड है विशेष चंद्रवंशी आत्मा और बाद में और वंशों की आत्मा, क्योंकि हर वंश के विधर्मी आत्मा है उनकी गोद में पली। कुमारिका दादी का ग्रुप कौन से धर्म तक सीमित है? इस्लाम धर्म तक सीमित।
बाबा ने कहा ना कि अभी बुद्ध के हाथ में सत्ता आ गई, बुद्ध की जो आत्मा है उसी के हाथ में सत्ता आ गई।
बुद्ध की आत्मा के हाथ में सत्ता
आ गई?
कौन सी सत्ता?
लौकिक
दुनिया की,
अलौकिक
दुनिया की,
पारलौकिक
दुनिया
की? आलौकिक दुनिया की सत्ता जो कि बीकेगी है, बीकेगी दुनिया की सत्ता पहले इस्लाम धर्म में था उसी के हाथ में। उसके बाद वो चले जाने के बाद बुद्ध की जो है आत्मा उसी के ऊपर सत्ता उसी के हाथ में।
अच्छा फिर
तो कैसी?
ये कहना चाहिए कि बाबा ने बोला है कि आखरीन कोई क्रिश्चियन को भी ये राष्ट्रपति बना देवेंगे। इसका मतलब क्रिश्चियंस के दो तरह के ग्रुप हैं, एक नास्तिक ग्रुप और एक आस्तिक ग्रुप। ये नास्तिक ग्रुप अंत में ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएगा। नास्तिक ग्रुप कहां से निकला है? कौन से धर्म से निकला? आर्य समाज से। आर्य समाज से भी नहीं निकला। आर्य समाज में भी नास्तिकता होती है लेकिन आधी नास्तिकता होती है, वो भी भगवान को मानते हैं। आर्य समाज ही भगवान को निराकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो आधी नास्तिकता कहेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें से नास्तिकता का उदय हुआ? जिस धर्म ने अपने साहित्य में न आत्मा का जिक्र किया है, न परमात्मा का जिक्र किया है, न स्वर्ग का जिक्र किया है? बौद्ध धर्म। इस्लामी तो फिर भी खुदा परस्त होते हैं। बौद्ध धर्म वाले तो बुद्ध को ही भगवान मानते हैं और किसी को भगवान मानते ही नहीं। और उनकी तो पूरी हिस्ट्री मिलती है। तो क्या 2500 वर्ष पहले ही भगवान था? उससे पहले भगवान नहीं था दुनिया में? तो नास्तिकवाद भी आएगा। हर धर्म का ओरिजिन तो भारत से ही है, फाउंडेशन तो भारत में ही लगता है। और
वार्तालाप ने लेकिन बाबा तो बुद्ध के हाथ में चला गया बोले।
माने नास्तिकता के हाथ में सत्ता आ गई। बौद्ध धर्म उसमें नास्तिकता भरी हुई है। महात्मा बुद्ध के अलावा और वो किसी को भगवान नहीं मानते। ऊंची से ऊंची अस्थि महात्मा बुद्ध को मानते हैं। क्या उससे पहले भगवान का अस्तित्व तो नहीं था? था? बाबा ने तो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा है, तो अस्तित्व तो रहता है ना। शिव जिसको आप समान बना के जाता है वो ही अस्तित्व है।
बाबा हम अमृतसर में गए आश्रम में।
कहाँ?
अमृतसर में।
अमृतसर
वहाँ गए हमारे आश्रम में।
हाँ
वहाँ बहन जी बता रहे थे कि हमें अट्रैक्शन मिला है कि आप किसी को अंदर नहीं आने देना, जाने पहचाने, जब इसको आप जानते हो तब अंदर आने देना, क्योंकि इस ना हम एडवांस पार्टी वाले घूम रहे हैं, शंकर पार्टी वाले घूम रहे
हैं,
ऐसे बोल रहे हैं। हम बोले वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वो ना उल्टी सीधी बातें बताकर ना हमें बता देते हैं जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बोल रहे
तो बोलने दो। तो बाबा ने हमें बता दिया ना,
हमने बताया नहीं, हाँ कहाँ चले गए एडवांस पार्टी में गए,
बाबा ने तो हमको पहले बता दिया, और कोई सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते, सिर्फ यही ईश्वरीय सत्संग ही सच्चा है, जिनको आने के लिए जाने के लिए मना करते, और कोई सिखों का गुरुद्वारा होता है, मंदिर होता है, गिरजाघर होता है, वहां कोई आने जाने से मना करते हैं कि आउजू आउजू करते हैं, मानपूर्वक बुलाते हैं कि हाँ भैया अच्छा है हमारे घर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान ही इसकी ये पहचान है, इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने वालों को आवाहन नहीं करते, दूर 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 कर देते।
बाप दादी के हाथ में जो अब प्रत्यक्षता का बटन हाथ में आया है,
है?
दादी के हाथ में जो बटन हाथ में आया है बटन,
है?
तो बटन दबा करके प्रत्यक्षता कराएगी, वो कब तक कराएगी?
और दादी का हाथ है अभी
वो तो मैसेज तो ये है ना संदेश के, दादी कहते मेरे हाथ में अभी बटन आ चुका है, बटन में दबा करके प्रत्यक्ष करूंगी।
हाँ, तो जो बटन है उनका हाथ है अभी है? बटन भी चैतन्य और उनका हाथ भी
चैतन्य,
मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य, बड़े सूक्ष्म शरीर के द्वारा है। तो बोला है जो प्रत्यक्षता होगी, चाहे सुखधाम की प्रत्यक्षता हो चाहे शांति धाम की प्रत्यक्षता हो, दोनों के गेट एक साथ खुलेंगे या आगे पीछे खुलेंगे, एक साथ खुलेंगे, और वो गेट खोलने वाली माताएं होंगी या भाई लोग होंगे,
माताएं,
माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं, और वो बटन चैतन्य होगा या स्थूल बटन होगा, कोई चैतन्य आत्मा है जो उनके हाथ में आ गई, इसीलिए तो अव्यक्तवाणी में बोला है कि प्रकृति ने कुमार का दादी से हाथ मिलाया, क्या हाथ मिलाया तो बटन हाथ में आ गया कि नहीं? नई दुनिया का गेट कौन खोलेगा, ब्रह्मा द्वारा खुलेगा या कोई और द्वारा खुलेगा? ब्रह्मा द्वारा खुलेगा। तो वो ब्रह्मा प्रैक्टिकल में चाहिए या हवा में उड़ गया वो चाहिए?
प्रैक्टिकल में चाहिए,
प्रैक्टिकल में चाहिए। तो बटन तो हाथ में आ गया कि नहीं आ गया?
वो कौन सा बटन है?
अभी बोला ना, प्रकृति जो है, प्रकृति ने कुमार का दादी से हाथ मिला लिया। कुमार का दादी रावण का कौन सा मुख हुआ? अरे रावण के पांच मुख दाई ओर के और पांच मुख बाई ओर के, उनमें पांच प्रकृति के तत्व कौन से हैं और पांच विकार के तत्व कौन से हैं? पांच विकार भी हैं और पांच प्रकृति के तत्व भी हैं, दस मिलकर ये रावण के सिर बनते हैं, उनमें पहला सिर कौन सा है? काम विकार, काम विकार का कनेक्शन कौन से धर्म से है? इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म का मुखिया कौन है?
इब्राहिम।
इब्राहिम तो ऊपर से आने वाली आत्मा है, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन?
कुमार का।
कुमार का।
तो वो तो काम है मुख्य पहला सिर, और उसके अंदर में है चार सिर, क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्या उनका ये ग्रुप है, लेकिन वो पांच विकारों का ग्रुप ब्राह्मणों की दुनिया को विनाश नहीं कर सकता। सारी ताकत लगा दी माया ने, एडवांस पार्टी का विनाश हो पाया? नहीं हो पाया, लेकिन अब होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति ने माया से हाथ मिला लिया।
दादी जिंदा रहते समय शरीर छोड़ने के बाद हाथ मिला?
ये बुद्ध रूपी हाथ है या शरीर रूपी हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ है।
बाबा क्या विनाश
है?
क्या विनाश होगा?
दुनिया का विनाश प्रकृति के द्वारा होता है या पांच विकारों से होता है? प्रकृति के पांच तत्वों में पृथ्वी जब डोलायमान होती है तो दुनिया की बिल्डिंगें
उधर
जाती है और लोग कहाँ रहते हैं? बिल्डिंग। तो सबसे बड़ा विनाश काय से होगा? भूकंप से होगा।
तो माउंट आबू में तो मीरचंद भाई कहने लगा, बाबा आप आते रहोगे तो दादी को भी साथ आते रहना, ताकि हमें संदेशा मिलता रहे शरीर का।
क्यों? दादी जब नहीं थी सूक्ष्म पतन में, जब उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा था तो संदेशा नहीं मिलता था? तभी मिलता था शरीर से। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा था तब संदेशा नहीं मिलता था? चलो अब और जो दादी के भगत होंगे वो दादी के ऊपर सारा कारोबार रख देंगे।
और सारा भक्ति मार्ग का ही उन्होंने किया, दिए जलाए था, वो पकर्मा दी, उन्होंने ये क्यों किया? मार्ग का तो कोई है ही नहीं उनके बीच में।
जो भक्ति मार्ग में कन्वर्ट होने वाला होगा वो भक्ति मार्ग के ही आडम्बर करेगा या ज्ञान मार्ग की बातों को पकड़ेगा? उनको तो फाउंडेशन डालना है। ओम शांति।